होटल की टेरेस पर त्रिशान, अलीजा और आकांक्षा रायना का इंतजार कर रहे थे। त्रिशान को पूरी उम्मीद थी कि उसका जादू काम करेगा, तो वहीं रायना के ना आने से आकांक्षा और अलीजा उस पर गुस्सा कर रही थीं। बोलते हुए अचानक आकांक्षा की नज़र टेरेस के दरवाजे पर पड़ी, जहां उसने रायना को ऊपर आते हुए देखा। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओ माई गॉड, ये तो सच में काम कर गया। वहां देखो, रायना इस तरह ही आ रही है। मैंने कहा था ना, लड़कियों को एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसे ज़रूर पहनना चाहती है। जानवी ने कहा था कि रायना को वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी और रिवांश ने उसे पहनने से मना कर दिया था। ऐसे में रायना के पास ये एक अच्छा मौका था जब वो इस ड्रेस को पहनकर ट्राई कर सकती थी, त्रिशान ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रायना ने उनके पास आकर कहा। बोलते हुए उसकी नज़र आकांक्षा पर पड़ी, तब उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो वही हो ना जो मेरे बेबी पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। देखो, उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसके ऐसा कहने पर आकांक्षा ने अपनी आंखें ऊपर घुमाई और अलीजा को उस तरफ आने का इशारा किया। अलीजा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आई और कहा, इन नीली नीली आँखों में देखो रायना, इन समंदर से गहरी आँखों में डूब जाओ, इनकी लहरों को महसूस करो। रायना एकटक अलीजा की आँखों में देख रही थी। कुछ ही देर में वो उसके हिप्नोसिस में आ चुकी थी। अब ये पूरी तरह हमारे वश में है, तुम इससे जो चाहे वो पूछ सकते हो, अलीजा ने कहा। उसके कहते ही आकांक्षा और त्रिशान रायना के सामने आए। सबसे पहले त्रिशान ने उससे पूछा, रायना, रिवांश तुमसे बहुत प्यार करता है ना, फिर वो तुम्हें बिना बताए इतनी रात को कहाँ गया है, वो भी किसी और के साथ? मेरा बेबी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता, वहाँ मेरा कोई काम नहीं था इसलिए वो मुझे नहीं लेकर गया, रायना ने खोए हुए स्वर में जवाब दिया। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो तुम्हारे बिना चला गया? तुम्हें बताकर तो ज़रूर गया होगा। चलो अब जल्दी से बताओ कि रिवांश कहाँ गया है, आकांक्षा ने थोड़ी सख्ती से पूछा। मुझे बताकर गया था लेकिन याद नहीं आ रहा, रायना कुछ सोचते हुए आगे बोली। हाँ, रॉबिन अंकल हमारे रूम में आए थे और उन्होंने बोला था कि उन्हें किसी पूजा में जाना है, बहुत ज़रूरी और बड़ी पूजा है, तो फिर रिवांश मुझे क्यों नहीं लेकर गया? उसकी बात सुनकर आकांक्षा ने हैरानी से कहा, इतनी रात को वो लोग कौन से भगवान की पूजा करने गए होंगे? भगवान की नहीं आकांक्षा, शैतान की पूजा। भगवान की पूजा इस तरह चोरी छुपे आधी रात को नहीं बल्कि सुबह भोर के समय की जाती है या फिर दिन के शुभ मुहूर्त में। इस रात के काले अंधेरे में अक्सर काली शक्तियों की ही पूजा होती है, त्रिशान ने कहा। नहीं, रिवांश शैतान की पूजा नहीं कर सकता। माना कि इस जन्म में वो थोड़ा अलग है लेकिन शैतान की पूजा ऐसा कभी नहीं हो सकता, बोलते हुए आकांक्षा की आंखें नम हो गई। अलीजा उसके पास आई और उसे सहारा देते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि जो हमें सामने दिख रहा हो वो पूरा सच हो, हम इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि रिवांश कहाँ गया होगा। तुम घबराओ मत, अगर वो शैतान की भी पूजा कर रहा है तो हम उसे ये नहीं करने देंगे। अलीजा की बातों से आकांक्षा को काफ़ी हिम्मत मिली। आकांक्षा रायना के पास गई और उससे पूछा, रिवांश और उसकी फैमिली पूजा करने के लिए कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, कहकर रायना त्रिशान के कंधे पर गिर गई। वो एक तरह की नींद में चली गई थी। अब क्या करें, ये तो बेहोश। जैसे ही त्रिशान ने अपनी बात कही, अलीजा ने उसके बात काटते हुए कहा, ये बेहोश नहीं हुई है, सो गई है, और डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा। जब भी ये नींद से जागेगी तो इसे कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अब हम रिवांश और उसके परिवार के बारे में कैसे पता लगाएंगे, और वो पूजा हम उस तक कैसे पहुँचेंगे, आकांक्षा ने चिंतित स्वर में कहा। मेरे मोबाइल में रिवांश का नंबर सेव होगा, वहाँ से तुम उसकी लोकेशन का पता कर सकते हो, रायना ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। चलो, ये लड़की किसी तो काम आई, अब हमें जल्द से जल्द इसका मोबाइल लेकर रिवांश तक पहुंचना होगा, अलीजा ने कहा। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और आगे बोला, मैं इस लड़की को इसके कमरे तक छोड़ आती हूँ और आते वक्त उसका फ़ोन ले आऊँगी, ऐसे में किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, कोई मिल भी गया तो बोल देंगे कि इसने शराब पी रखी है और रास्ते में गिरी हुई थी। आकांक्षा और त्रिशान ने उसकी बात पर सहमति जताई। अलीजा रायना को सहारा देते हुए उसके कमरे तक लेकर गई। उसे बेड पर लेटाने के बाद अलीजा ने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े रायना के मोबाइल पर गई। अलीजा ने उसे उठाया और वापस टेरेस पर चली गई। ये देखो, वो लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, त्रिशान ने आकांक्षा और अलीजा को मोबाइल में दिखाया। उसकी लोकेशन देखकर उन तीनों के चेहरे पर एक सन्नाटा था। चलो वहाँ चलते हैं, आकांक्षा ने नम आंखों से कहा। भले ही वो मेरा प्यार हो लेकिन हमें उसे रोकना होगा। लेकिन इस वक्त वहाँ जाना सही होगा, अलीजा ने पूछा। पता नहीं, लेकिन आकांक्षा तुम हमारे साथ मत चलो, मैं और अलीजा देख लेंगे, त्रिशान ने आकांक्षा को साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ बहस करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जल्द से जल्द रिवांश के पास पहुँचे। चलो अब आ जाओ, आकांक्षा जल्दी से टेरेस के दरवाजे की तरफ बढ़ी। अलीजा और त्रिशान भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था,
दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वहाँ एक अलग ही मंजर फैला था। इन सब के बीच रिवांश, रॉबिन और नैन्सी मुंबई के कब्रिस्तान में कब्र को खोलकर बैठे थे। कब्र में पड़ी लाश को देखकर लग रहा था कि उसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। जल्दी करो कि इससे पहले कोई आ जाए, रॉबिन ने थोड़ा घबराते हुए कहा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली थी, यहाँ कोई नहीं आएगा। रिवांश तुम विधि शुरू करो, नैन्सी ने कहा। रिवांश जो कि उस लाश के ठीक सामने बैठा था, उसने कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए। उन लोगों के पास पूजा का कुछ सामान भी था। वहां सामने कुछ विशेष प्रकार के पंख रखे हुए थे। रिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो बिना पलके झपकाए सिर्फ उसे मुर्दे की तरफ देख रहा था। ये लो, अब इसके सर के बाल काट कर चला दो, नैन्सी ने छोटी कैंची रिवांश को पकड़ाई। उसने उसे नैन्सी के हाथ से लिया और उस मुर्दे के सर के बाल काट कर उसे तुरंत जला दिया। उसके बाद उसने उसकी नाक के सामने कुछ पंखों को रखा। यही है वो वक्त जब हमें अपनी मुख्य प्रक्रिया को पूरा करना है। रिवांश तुम बाहर जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, नैन्सी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। रिवांश ने की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से खड़ा होकर बाहर चला गया, जैसे चाबी भरा हुआ कोई खिलौना हो। देखो कि वो बाहर चला गया है या नहीं, नैन्सी ने रॉबिन से कहा। उसके कहते ही रॉबिन रिवांश के पीछे चला गया। जब उसे लगा कि रिवांश कब्रिस्तान से बाहर दरवाजे तक जा चुका है, तब वो वापस नैन्सी के पास आया। उसे अपने पास देखकर नैन्सी को तसल्ली हो गई कि रिवांश यहाँ से जा चुका था। उसके बाद उसकी आंखें लाल हो गईं और सामने के दो लंबे दांत आगे निकल आए थे। वही हालत रॉबिन की थी। नैन्सी के नाखून लंबे लंबे थे और इसी से उसने मुर्दे की छाती पर हाथ रखा और उसके दिल को बाहर निकाल दिया, जो कि पहले ही मर चुका था। इसे शैतान के सामने अर्पित करना होगा, बोलते हुए नैन्सी ने वो दिल रॉबिन को पकड़ाया। उसके बाद उसने उस लाश के गर्दन की दाहिनी ओर कट लगाकर उसका खून पिया। अगले ही पल मुर्दे की आंखें खुली थी और वो कब्र में से खड़ा हो गया। आज से तुम शैतान के गुलाम हो और उन्हीं के लिए काम करोगे, नैन्सी ने आदेशात्मक स्वर में बोला।
वो मुर्दा उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। नैन्सी मुस्कुराते हुए रॉबिन की तरफ मुड़ी और कहा, जो काम ये लड़का पिछले जन्म में नहीं कर पाया था, वो हम इस जन्म में कर रहे हैं। हम शैतान की सेना में वृद्धि कर रहे हैं। इस दुनिया में हम पिशाचों का राज होकर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ बुराई का आधिपत्य होगा, हमारा राज होगा। आज हमने शैतान की सेना में एक और सैनिक को डाला है। इसके बदले में हमारी एक और मनोकामना पूरी होगी। बोलो क्या मांगना है, रॉबिन ने पूछा। अभी उसके लिए सही वक्त नहीं आया है। मैं जो मांगने वाली हूँ वो काफी बड़ा है, और बड़ी चीज मांगने के लिए कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है। एक बलि से कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ के मैनेजर से बात कर ली है। जब तक हम यहाँ हैं, हमारे लिए लाशों का इंतजाम होता रहेगा, नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। रिवांश अभी भी बाहर खड़ा था। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा होगा। नैन्सी ने वहां आग जलाई और रॉबिन के साथ एक पूजा करने लगी। इस पूजा में वो मुर्दा भी शामिल था। अब वो भी उनकी तरह एक पिशाच बन चुका था। अंदर आ जाओ, पूजा करते हुए नैन्सी ने बंद आंखों से कहा। अगले ही पल रिवांश उनके पास बैठा था। रॉबिन ने उसके हाथ में मुर्दे का दिल पकड़ाते हुए कहा, इसे शैतान को अर्पित करो। उनके कहने पर रिवांश ने उसे दिल को अग्नि में डाल दिया। इसी के साथ आग तेज हो गई और आसमान में एक बिजली कड़की। पूजा करने के बाद वो सब खड़े हो गए। रॉबिन ने उस मुर्दे की तरह मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम मेरे चाचा के बेटे हो और रिवांश के अंकल। रिवांश की शादी में तुम्हारा स्वागत है। वहां होटल में खूब ताज़ा ताज़ा खून मिलेगा। तुम हम पिशाचों की संख्या में जितनी वृद्धि करोगे, शैतान तुमसे उतना ही खुश होंगे। घबराओ मत, वहां हमारी बिरादरी के बहुत लोग मौजूद होंगे। जी भैया बोलकर वो मुर्दा रॉबिन के गले लग गया। अपनी पूजा करके वो लोग वहां से जा चुके थे, जबकि उनसे कुछ दूर छुपे अलीजा, आकांक्षा और त्रिशान ने थोड़ी देर पहले जो देखा, उस पर उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा था? उस आदमी ने कहा कि हमारी बिरादरी के और भी लोग मौजूद हैं। इसका मतलब रिवांश की फैमिली और उस शादी को अटेंड करने आए सारे गेस्ट वैम्पायर हैं, आकांक्षा ने आंखें बड़ी करके कहा। सही कहा था दादू ने, इस बार सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रिवांश ने अपने हाथों से उस दिल को अग्नि में डालकर शैतान को अर्पित किया था, त्रिशान ने कहा। जब रिवांश की पूरी फैमिली वैम्पायर है तो क्या वो भी? जैसे ही अलीजा ने कहा, आकांक्षा और त्रिशान उसकी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था वो उसे देखकर काफी घबरा गए थे। क्रमशः कीप सपोर्टिंग।